नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बजट भाषण को आर्थिक परिवर्तन की व्यापक रूपरेखा बताया। लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता के मौजूदा प्रावधानों के और स्पष्टीकरण के लिए संशोधन विधेयक पेश। सरकार ने लोकसभा में बताया, भारत बिजली की कमी वाले देश से बिजली अधिशेष देश बना। बांग्लादेश में आम चुनाव और संवैधानिक तथा संस्थागत सुधारों पर जनमत संग्रह के लिए मतदान जारी। और राउरकेला में FIH प्रो लीग हॉकी में आज भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में अपने भाषण में इस बात का व्यापक विवरण दिया कि इस वर्ष का बजट देश के आर्थिक परिवर्तन में किस प्रकार योगदान देगा। लोकसभा में बजट पर वित्त मंत्री के जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को समर्थन, कौशल विकास, अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और शिक्षा आदि पर जोर दिया। लोकसभा में आज औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पटल पर रखा गया। ये विधेयक औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में संशोधन करता है। इसका उद्देश्य 2020 के औद्योगिक संबंध संहिता से जुड़े कुछ कानूनों में बदलावों की निरंतरता को लेकर भविष्य में होने वाली अनावश्यक जटिलताओं से बचने के उपाय करना है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन में ये विधेयक पेश किया।
The Trade Union Act 1926, the Industrial Employment Act 1946 and Industrial Dispute Act 1947, ये तीन एक्ट पुराने थे। ये तीनों को समाहित करके एक नया कोड लाया गया। ये एक्ट में शामिल हो जाए इस उद्देश्य के साथ एक छोटा सा अमेंडमेंट था। ये एक एक्ट का भी पार्ट बन जाए। रिपील ऑलरेडी सरकार ने कर दिया है। मैं सदन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अमेंडमेंट को स्वीकार करे और पारित करे।
चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के कोडिकुन्निल सुरेश ने कहा कि औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 से सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं में बेरोजगारी दर बहुत अधिक है और रोजगार संरक्षण के प्रावधानों को मजबूत करने के बजाय सरकार इसे कमजोर कर रही है। वहीं भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि ये विधेयक श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है और उद्योगों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा है कि भारत बिजली की कमी वाले देश से बिजली अधिशेष देश बन गया है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री नाइक ने कहा कि पिछले कई साल से विद्युत क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब पड़ोसी देशों को बिजली आपूर्ति कर रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से पावर सेक्टर में व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज भारत एक पावर डेफिसिट जो कंट्री है, राष्ट्र से आगे बढ़कर पावर सफिशिएंट ही नहीं बल्कि पावर सरप्लस राष्ट्र बना हुआ है।
श्री नाइक ने कहा कि विद्युत संशोधन विधेयक जल्द ही पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन के माध्यम से बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करना है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सदन में बिना तथ्य या सबूत पेश किए बयान देने का आरोप लगाया। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्तावों पर निर्णय संसदीय कार्य मंत्रालय के पास है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह अपरिपक्व व्यवहार कर रहे हैं।
पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर डिसाइड करेगा, सदन में हो सदन के बाहर हो। मोस्ट इमेच्योर बिहेवियर वो हर बार कर रहे हैं और जनता इसीलिए उनको हार का रुचि हर बार दिखा रहे हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आता।
राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा फिर शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस महीने की पहली तारीख को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया था। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा नेता मदन राठौर ने कहा कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में देश अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। भाजपा के ही शंभू शरण पटेल ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि देशवासियों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के कारण तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र केकेएनपीपी निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान डॉ सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि तीसरी इकाई 2026 तक और चौथी इकाई 2027 तक पूरी होने की संभावना है। श्री सिंह ने कहा कि भारत का परमाणु कार्यक्रम विस्तार के दौर में है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहस और दूरदर्शी सोच के कारण संभव हो पाया है।
10-11 वर्षों में इस सेक्टर में भी भारत बड़ी तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। यदि आप आंकड़ों पर नजर डालें तो सन 2014 में जब ये सरकार आई तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कैपेसिटी थी मात्र 4,780 मेगावाट। आज फरवरी 2026 में वो दुगनी से अधिक होकर के 8,780 मेगावाट।
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि पिछले 2 वर्ष में जम्मू कश्मीर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में 1,60,000 से अधिक नए सदस्य जुड़े हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक रूप देने की दिशा में काम कर रही है। श्रीमती करंदलाजे ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने देश भर में 10 लाख से अधिक उद्यमियों को 29,000 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी है। केंद्रीय मंत्री ने सदन को पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी दी।
विश्वकर्मा योजना हमारा पारंपरिक कामचारिक एक योजना है सर। हमारा लक्ष्य था 4 साल में 30 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन करना, मगर केवल 2 साल का अंदर हम 30 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन किया, 22 लाख लोगों को हम ट्रेनिंग दिया, 12 लाख लोगों को हम टूल किट बांटा अभी तक, इसी में 5.18 लोगों को हम कोलेटरल फ्री लोन दिया।
श्रीमती करंदलाजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज उड़ीसा के एक आंगनवाड़ी केंद्र में जाति आधारित कथित भेदभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में प्रगति और सुधार के दावों के बावजूद ये घटना लगातार जारी सामाजिक भेदभाव को दर्शाती है।
21वीं सदी में जबकि हम बड़े बड़े सामाजिक विकास के दावे करते हैं, सामाजिक रिफॉर्म की बात करते हैं, हिंदू एक होना इसकी बात करते हैं, तो ओडिशा में एक दलित महिला हेल्पर कम कुक द्वारा तैयार भोजन को समुदाय विशेष के लोग अपने बच्चों को देने से मना कर देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं संविधान के आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को सीधे प्रभावित करती है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय राजधानी में सेवा तीर्थ भवन परिसर की नाम पट्टिका का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री का कल शाम को सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। ये उद्घाटन देश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग अलग स्थानों पर थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली में भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 में उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एआई पर तेजी से काम हो रहा है और इसके लिए देश में पर्याप्त युवा प्रतिभाएं मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई को भारत के शिक्षा प्रणाली में कक्षा 3 से लेकर उन्नत शोध स्तर तक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
क्लास 3 से लेकर एडवांस रिसर्च तक एआई को एज ए टॉपिक, एज ए रिसर्च इश्यू, एज ए मॉडल, एज ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी की विषय नहीं है। अभी हमने देखा कई सारे बी स्कूल्स अपने पढ़ाई में एआई प्रिपेयरनेस में बाकी संस्थानों से भी आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन उसकी डीप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी इनोवेशन कर रहे हैं, उसकी मॉडल बना रहे हैं।
विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते के अंतर्गत भारत की पहलों पर एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के सहयोग से आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि चर्चाओं में क्षेत्रीय और वैश्विक प्रवासन प्रक्रियाओं में भारत की भागीदारी निरंतर झलकती है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष सालाना 90 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। इससे 45 अरब डॉलर का अतिरिक्त वार्षिक व्यापार अधिशेष भी प्राप्त हो सकेगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने आज एक शोध रिपोर्ट में कहा है कि यह वृद्धि भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के 1.1% के बराबर है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में 3 अरब डॉलर की बचत भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव के लिए 299 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी है। आज सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4:30 बजे तक चलेगा। देश भर में 42,000 से अधिक केंद्रों पर 12,77,00,000 से अधिक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदाता जुलाई चार्टर के अंतर्गत प्रस्तावित सुधारों पर जनमत संग्रह में भी भाग ले रहे हैं।
BNP अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका के गुलशन मॉडल हाई स्कूल में मतदान करने के बाद अपनी पार्टी की जीत को लेकर भरोसा जताया। मतदान से एक दिन पहले हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था एजेंसियों की सख्त कार्रवाई उत्साहजनक है। जमाते इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने मीरपुर में मतदान करने के बाद कहा कि उनकी पार्टी किसी भी बड़ी अनियमितता को नजरअंदाज नहीं करेगी और मतदान के अधिकारों की रक्षा करेगी। यूरोपीय संघ के परिवेशक मिशन ने अब तक मतदाताओं में सकारात्मक उत्साह देखा, जबकि गृह मामलों के सलाहकार ने मतदान को अब तक शांतिपूर्ण बताया है। परिणाम शुक्रवार को आने की उम्मीद है, हालांकि कई मतपत्रों की गिनती होने के कारण इसमें अतिरिक्त समय लग सकता है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
इस बीच बांग्लादेश में आम चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के सभी सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के जवान सीमाओं पर निगरानी रख रहे हैं। जलपाईगुड़ी जिले के फुलबारी और अन्य स्थानों पर आवर्जन चौकियों के माध्यम से दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापार रोक दिया गया है। कूचबिहार का चंद्रबंधा स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कल बंद रहा। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज मणिपुर के जिरिबाम जिले में देश में विस्थापित लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जिरिबाम हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में राहत शिविर का दौरा किया और मैतेई जनजाति के विस्थापित लोगों से बातचीत की। श्री खेमचंद ने विस्थापितों से बातचीत करते हुए सभी से शांति और विकास के मार्ग पर चलने की अपील की। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने अगले वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए स्थापित होमस्टे को 70% सब्सिडी प्रदान करने वाली योजना की घोषणा की है। ये घोषणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान की गई। FIH प्रो लीग पुरुष हॉकी में भारत हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में आज अर्जेंटीना से खेलेगा। ये मैच शाम 7:30 बजे ओडिशा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इस बीच श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए थे। जवाब में ओमान 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना सका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश और हिमपात का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बजट भाषण को आर्थिक परिवर्तन की व्यापक रूपरेखा बताया। लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता के मौजूदा प्रावधानों के और स्पष्टीकरण के लिए संशोधन विधेयक पेश। सरकार ने लोकसभा में बताया, भारत बिजली की कमी वाले देश से बिजली अधिशेष देश बना। और राउरकेला में FIH प्रो लीग हॉकी में आज भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।